ممكن إيك صوفي بودھ کتھا ہے، ایک لکڑہارا روز ایک جنگل میں جاتا تھا، بوڑھا تھا، روز لکڑیاں توڑ کر لاتا تھا۔ ایک یوگی وہیں بیٹھے تپسیا کرتے رہتا تھا، اور اس یوگی نے اس لکڑہارے سے کہا، تم یہیں کیوں رکتے ہو، اور آگے جاؤ۔ اس لکڑہارے نے کہا، میں کہاں جاؤں آگے، کیول جنگل ہی جنگل ہے۔ اس یوگی نے کہا، ایک بار جا کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے تمہیں روز روز نہ آنا پڑے۔ وہ لکڑہارا آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے وہاں ایک تانبے کی کھدان ہے۔ تو وہاں سے تانبا لے لیتا ہے، اور اب اسے ہفتے میں ایک ہی بار آنا پڑتا ہے، روز آنے کی آوشیکتا نہیں۔ اور اگلی بار جب وہ آتا ہے تو یوگی اسے پھر کہتا ہے، اور آگے جاؤ، یہیں کیوں رک گئے۔ وہ لکڑہارا کہتا ہے، اور آگے جا کے کیا کروں، مجھے تانبے کی کھدان مل گئی ہے۔ ایک ہفتہ تک گزارا ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ یوگی کہتا ہے، جا کر دیکھو۔ وہ لکڑہارا اور آگے جاتا ہے، دیکھتا ہے چاندی کی کھدان ہے، سلور مائن۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہاں سے چاندی لیتا ہے، اور اب اسے مہینے میں ایک ہی بار آنا پڑتا ہے۔ اور وہ مہینے میں ایک بار جب آتا ہے تو وہ یوگی اس سے کہتا ہے، اور آگے جاؤ۔ وہ کہتا ہے، اب اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ وہ یوگی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کو سال میں ایک ہی بار آنا پڑے۔ وہ لکڑہارا اس کی بات مانتا ہے اور آگے جاتا ہے، دیکھتا ہے وہاں سونے کی کھدان ہے۔ بہت خوش ہوتا ہے اور سونا لیتا ہے، اور سال بھر نہیں آتا، اتنا سونا اسے مل جاتا ہے۔ سال بھر بعد جب وہ آتا ہے تو یوگی کہتا ہے، اور آگے جاؤ۔ وہ لکڑہارا کہتا ہے، اب اور آگے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، شاید تمہیں آنا ہی نہ پڑے۔ وہ لکڑہارا اور آگے جاتا ہے، وہاں پر ہیرو کی کھدان ملتی ہے، اور وہ ڈھیر سارا ہیرے وہاں سے لیتا ہے، اور پھر لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ اور ایک دن وہ یوگی ہی اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، اور اس سے کہتا ہے، تم رک کیوں گئے، اور آگے جاؤ۔ وہ لکڑہارا کہتا ہے، اب اور کہاں آگے جاؤں، اتنے ہیرے مل گئے ہیں کہ کچھ بھی کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے، کئی پیڑیاں آرام سے چل جائے گی۔ پھر بھی وہ یوگی کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور جنگل میں یوگی بیٹھتا ہے، چاروں طرف نیروتا، شانتی، مون اور ایکانت۔ اور وہ یوگی کہتا، ہیرو کے آگے میں ہوں۔ اور وہ دونوں وہاں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے وہ لکڑہارا دیہبھان سے پرے ہو جاتا ہے، آتمک سکھ میں ڈولنے لگتا ہے، اور اسے اتندریہ سکھ کا انوبھو ہوتا ہے۔ اور وہ وہیں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے اس یوگی کے پاس، اور پھر یوگی آنکھ کھولتا ہے اور کہتا ہے، اور آگے جاؤ۔ وہ لکڑہارا کہتا ہے، اور کہاں آگے جاؤں، ऐसा सुख, ऐसा अतीन्द्रिय सुख, ऐसा आनंद तो मुझे आज तक नहीं मिला। इस आनंद के सामने तो वो हीरे भी फीके हैं, अब इससे भी क्या और आगे। वो योगी कहता है इससे आगे वो परमात्मा है, तुम उस तक जाओ। मनुष्यों में नहीं अटको, वो सर्वोच्च है, वो जो सृष्टि का नियंता है, वो जो भगवान है, उसका प्रेम सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। तुम उस तक जाओ और उसके आगे और कुछ नहीं। सुबह की अव्यक्त वाणी। बाबा ने कहा ये परमात्मा प्रेम तुमको कब मिलता है? केवल अब। और ये प्रेम क्या करता है? देहबान से न्यारा और बाप का प्यारा बना देता है। इतना प्यार करेगा कौन? सीजन की पहली मुरली है, 2011 अक्टूबर मास, देश विदेश से, मुख्य रूप से विदेशी योग का टर्न है, डायमंड हॉल और अव्यक्त महावाक्य है। बाबा क्या देख रहा है? प्यारे प्यारे और मीठे मीठे बच्चों को देख रहा है। वो उनको भी देख रहा है जो सभा में नहीं है, और वो देख रहा है हर एक के हृदय में कैसे अथाह प्रेम है। और ये प्रेम क्या कर देता है? इस प्रेम का केवल तुम अनुभव नहीं करते हो, अनुभव कराते भी हो। और यह प्रेम हाईएस्ट सर्वोच्च है। उस तांबे के खदान के आगे, चांदी की खदान, उससे भी आगे सोने की खदान, उससे भी आगे हीरे की खदान, और उससे भी आगे कोई मनुष्य गुरु, और मनुष्य गुरु के भी आगे वो परम सद्गुरु। और उसका प्रेम पाना ये जीवन का वरदान है। धन्य है वो आत्माएं जो ऐसे प्रेम के साथ जिन्होंने जन्म लिया है। धन्य है वो आत्माएं जो जीवन में चलते चलते इस प्रेम को प्राप्त हुई है, क्योंकि इस प्रेम से बड़ा प्रेम और कोई हो नहीं सकता। संसार के लोग कहाँ फंसे हैं मनुष्यों के प्रेम में, स्वार्थ और ऐसी स्वार्थी दुनिया में कितनी कम आत्माएं हैं जिनके हृदय में यह प्रभु प्रेम जन्म लेता है। और वो आत्माएं कैसी भाग्यशाली है जो बचपन से ही इस प्रभु पालना में पल रही है। तो आज की मुरली बाबा ने किस किस से प्रेम करना है वो बताया है। ऐसी 8 बातें हम देखेंगे, पर उससे पहले आप बताएंगे क्या सुना, क्या पढ़ा और क्या याद है। सबसे पहले आप बताओ आज की मुरली में क्या था? क्या क्या व्यर्थ संकल्प का क्या करो? समाप्त करो। समय और संकल्प और उठते जागते। आज की मुरली में ये तो है ही नहीं। आज की मुरली बतानी है, हफ्ते भर की मुरली नहीं बतानी है। हर एक बच्चा बाप समान बने और संस्कार मिलन की क्या करो? रास डांस और तीन भाग्य की रेखाएं देखी मस्तक पर, कौन सी? बाप से क्या और टीचर से क्या? श्रेष्ठ शिक्षा। और गुरु से, सदगुरु से वरदान। और माँ से क्या? नहीं आया है। और क्या कहा? मन हमारी रचना है। नई बात है ना? माइंड इज योर क्रिएशन। मन कौन है? हमारी रचना है। हम कौन है? मालिक। और क्या कहा? रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। और क्या कहा? श्रीमत क्या? श्रीमत की लगाम को क्या करो? टाइट। और घोड़ा कौन है? मन। और क्या कहा? दृढ़ता क्या है? सफलता की चाबी। और बाप समान बनना है। और फॉलो फादर करना है। और व्यर्थ संकल्प भी क्या है? इम्प्यूरिटी। इसको भी, इससे भी मुक्त होना है। विचार ही विचार चलते ही रहते, चलते ही रहते, चलते ही रहते। घटना को हुए, साल गुजर गए, पर उससे मुक्त नहीं हुए हैं। विचार 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 नॉन स्टॉप। और कमजोर, कमजोरों पर रहम। और क्या? शुभ भावना, कल्याण की भावना। और रहम, कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना। व्यर्थ समाप्त करो और निष्काम सेवा करो और विश्व कल्याण करिए। और बन बना वो बनना है। अच्छा, तो छोटा कुमार कह रहा है कि मन मना भव। और श्रेष्ठ कम संकल्प कमार करके दिखाया नहीं, अच्छे से बताओ। लाइन का कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है। और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो सबसे पावरफुल वाक्य है आज की मुरली का। संपूर्ण पवित्रता, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। और मुक्ति का गेट कब खुलेगा? कब खुलेगा? जब तुम संपन्न बनोगे। और डेट फिक्स करने को कहा। और अपनी गलती दूसरों पर डैश, अपनी गलती पर दूसरे पर डैश, ये पर चिंतन है। दूसरे पर क्या? लगाना, लगाना, थोपना, धकेलना। और हो गया चार पेज। ब्रह्मा बाबा का क्या करो? ब्रह्मा बाबा हर बच्चे की कमजोरी जानते हैं, लेकिन रहम दिल। और दीदी ने कहा है घर चलना है। और दादी ने क्या कहा? कर्मातीत होना है। और नाउ और नेवर। और एवर रेडी। और डेट फिक्स करो। तो आपने कर दी क्या? देखो कितना याद है उसको। कितनी एज है? 8। तो 8 एज में डेट फिक्स करने की बात चल रही है। हम क्या कर रहे थे जब 8 साल के थे? और संस्कार विलन की रास हो चुकी। और बताओ। प्रभु प्रेम, प्रभु परिवार है ये, ईश्वरीय परिवार है, प्रभु परिवार है। और एक एक साल का टाइम, और ये मुरली ऑलरेडी शांतिवन में चली है, ये तीसरी बार चल रही है, एक 2011 में, 2022 में और आज। और VIP क्या कोई भी मुझसे भारी ना हो, ये भी बहुत पावरफुल पॉइंट है आज की मुरली की। और नाराज भी ना हो, भारी भी ना हो। किसकी सेरेमनी मनाओ? प्लैटिनम जुबली तो मनानी है, पर सेरेमनी किसकी मनाओ? वैद संकल्प के समाप्ति की सेरेमनी मनाओ। और हाँ, दीपावली, उसके उसका होमवर्क दिया है, वही संस्कार मिलन। और निष्काम सेवा हो गया। और सहयोग देना है, पिछले संडे की मुरली में था सहयोग के नोट्स, और आज कहा सहयोग का स्टॉक। और कमजोरी देखकर ये नहीं कहो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये करता है, ये करता है, इसको भी डैश करो, खत्म करो। और हाँ, तो चेकिंग करो, माइंड की चेकिंग करो। और मानशान, और कुर्बानी, प्यार में क्या दी जाती है? कुर्बानी दी जाती है, टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर द बिलवेड, अर्पित कर देना स्वयं को जिससे प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और हो गया क्यों, और भी कुछ है? ढूंढो जरा, डबल फॉरेनर्स के बारे में क्या बताया, क्या करा? डबल पुरुषार्थी, डबल निश्चय, और सदा हर्षित रहने वाले, और नाम सहित, एक एक के नाम सहित याद करते हैं। और तो इस मुरली से हम 8 बातें देखेंगे जिससे प्यार करना है, और सबसे पहली है बाप, प्रभु प्रेम, जिससे मुरली की शुरुआत है। ये प्रेम ऐसा है जो आत्माभिमानी बना देता है, ये प्रेम ऐसा है जो देह से न्यारा कर देता है, इस प्रेम को बढ़ाना है। आत्मा जब तक उस प्रभु से नहीं मिलती अपूर्ण रहती है, और उसके भीतर खालीपन रहता है। संसार में जितने विकार विकर्म हो रहे हैं, उन सब का एक ही कारण है, खालीपन। भीतर दुख है, भीतर खालीपन है। जितने एडिक्शन है, जितने व्यसन है, उनका क्या कारण है? भीतर खालीपन है। उस खालीपन को भरने का एक असफल प्रयास है, व्यक्ति विकार में जाता है, ड्रग्स, व्यसन, एडिक्शंस, एंटरटेनमेंट, सत्ता, पैसा, ये सब की ओर क्यों भागता है? क्योंकि भीतर खालीपन है, और ये खालीपन इस संसार की कोई भी वस्तु भर नहीं सकती। इस खालीपन को केवल प्रभु प्रेम से ही भरा जाता है, और वो कैसे भरे ये मानवता को पता नहीं, इसलिए चारों तरफ अराजकता है, भटकाव है, द्वंद्व है, लड़ाइयाँ है, झगड़े हैं, नफरत है, घृणा है। एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, ENT स्पेशलिस्ट, और कहता है मुझे सुनाई नहीं देता है। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं जांच करता हूँ, जांच होती है, और उसे यंत्र देता है, हियरिंग एड, और उसको कहता है अब तुम सब सुन सकोगे। एक मास के बाद वो पेशेंट वापस आता है डॉक्टर कहता है अब कैसा है, तुम्हें तो पूरा सुनाई देता होगा, तो तुम्हारे घर वाले तो बहुत खुश हो गए होंगे। वो कहता है हाँ अब मुझे सब सुनाई देता है, पहले कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और इन एक मास में, पर मैंने घर वालों को बताया नहीं कि मुझे सुनाई नहीं देता, और इस एक मास में 3 बार मैंने वसीयत बदल दी, और उनको घर वालों को बताया नहीं कि वो जो बोलते हैं मुझे सुनाई देता है। हो सकता है बेटे को बोलते हुए कुछ सुना और सोचा होगा इसको मैं सब दे दूं, पर उसकी ऐसी बातें सुनी कि चेंज, फिर सोचा ये ठीक नहीं है दूसरा ठीक है, फिर उसकी बातें भी सुन ली पर उसको बताया नहीं कि मैं सुन रहा हूं, फिर बदल दी और फिर बदल दी। मनुष्य का प्रेम स्वार्थी है, स्वार्थ निहित है उसमें। एक परमात्मा का ही प्रेम है जो निस्वार्थ है, एक वही प्रेम है जो सदा है, केवल हम उससे दूर चले जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। ठंड का मौसम है और एक जगह आग जल रही है, हम दूर खड़े और कहते हैं बहुत ठंडी है बहुत ठंडी है, नजदीक जाओ आग तो वही है, हम दूर हैं, बारिश तो हो ही रही है, हम घर के अंदर हैं और कहते हैं हमें प्यास लगी, बाहर आओ, ईश्वरीय प्रेम की बारिश तो सदा ही बरस रही है। तो सबसे पहला ईश्वरीय प्रेम, परमात्मा प्रेम, द लव डिवाइन, अगर ये खो गया है तो एकांत में जाने की आवश्यकता है, स्वयं से बातें करने की आवश्यकता है, रुकने की आवश्यकता है। दूसरा है भाग्य से प्रेम। भाग्य की क्या कहीं 3 रेखाएं हैं, स्वयं भगवान पिता बना है, शिक्षक बना है, टीचर, और उसकी ये टीचिंग्स है, उसको धारण करना है, उसको समझना है। गुरु है, संसार में जब भी जीवन में गृहस्थ जीवन में कोई हलचल होती है तो किसके पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या करें बताओ, फिर गुरु कोई उपाय सोचाता है। उसी तरह ये गुरु है, उसको बताओ, उससे बात करो, उससे पूछो, तो वो मार्ग बताएगा। परंतु पहले ही यदि हमारे मन में उत्तर है तो उत्तर नहीं आएगा, क्या करो खाली होकर जाओ, अमृत वेला बैठो और उसे पूछो क्या करे। तदविद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनां तत्वदर्शनां। गीता में लिखा है गुरु के पास जाते हो ऐसे नहीं जाओ कि उसको टेस्ट करने जा रहे कि इसको पता है कि नहीं पता मैं पूछूं, उसको टेस्टिंग के लिए नहीं जाना है। कैसे जाओ, सेवा भाव से, परिप्रश्ने न सेवया, पहले सेवा करो उसकी और सेवा करते करते फिर प्रश्न पूछो, तब वह उपदेशन्ति ते ज्ञानेन, तब वो उस ज्ञान का उपदेश देगा जो परम है, जो इतने समय से समझ नहीं आया, पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं पर फिर भी समझा नहीं। तो सुबह अमृत वेला बैठो और पूछो तो उत्तर देगा, परंतु कैसे, स्वयं को खाली कर रिक्त कर और सच्चाई से। अपनी पूरी जीवन कहानी एक बार अमृत वेला रोज बाबा को सुनानी है। क्या करना है अमृत वेला, अपनी कंप्लीट लाइफ स्टोरी ऑटोबायोग्राफी सुनानी है, ये हुआ, ऐसा ऐसे हुआ और अब मैं यहां हूं, ये हुआ। रोज रोज सुनाएंगे तो इस ऑटोबायोग्राफी के जो दर्दनाक सीन है और जिसको देखने से हम डरते हैं और जो अतीत में खो गए हैं उनको हम देख सकेंगे, चाहे मूवी कितनी भी हॉरर वाली हो, ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना, और जब बार बार देखते हैं तो फिर डर नहीं लगता, पहली बार देखते हैं तो डर लगता है। तो जीवन में ऐसे दृश्य हुए हैं, किसी ने धोखा दिया है, किसी की मृत्यु हुई है, किसी की बीमारी देखी है, किसी की निंदा सुनी है, कोई पाप किया है, कोई विकर्म किया है, उसे हम देखना नहीं चाहते और डर लगता है उसे देखने से, वो दब गया है, इतनी परतें हैं ऊपर। अमृत वेले बैठो और उसे सुनाओ, ये है, तो वो बोझ कम होगा। दिल्ली में एक कपल गाड़ी चला रहे थे, वो जा रहे थे और देखा बहुत भीड़ लगी है रास्ते में, कोई एक्सीडेंट हुआ है। वो पति पत्नी से कहता है, लोग फालतू में भीड़ करके रखते हैं, पहले ही हमें लेट हो रहा है, और इधर उधर की बातें और गालियां देते हुए वहां से निकलते हैं। पता चलता है शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है और लोग भीड़ कर रहे हैं, वो लोग दूसरे रास्ते से घर चले जाते हैं, आराम से बैठ के टीवी देखते हैं दोनों, और तब फोन आता है उसी स्थान से जहां एक्सीडेंट हुआ था, उनका ये सत्य घटना है, अभी अभी हुई, उनका जो बेटा था उसी का एक्सीडेंट हुआ था और उसी की डेथ हुई थी ऑन द स्पॉट, वही पड़ा हुआ था वहां बाइक चलाते हुए रास्ते पर लहूलुहान। तो जीवन में दर्दनाक घटनाएं हुई है और व्यक्ति फिर सोचता है मैं दोषी हूं, ग्रीफ रिएक्शन, और उससे छूट नहीं पाता। हृदय के घाव जो है उसकी ट्रीटमेंट है स्नेहमयी साक्षी दृष्टि, अपने ही घावों को साक्षी होकर दृष्टि देना, तब हीलिंग स्टार्ट हो गई, तब तक नहीं होगी। तो पहला है प्रभु प्रेम, दूसरा है अपने भाग्य को देखना। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गुरु के पास जाओ, गाइड बनाओ उसको, गाइड होता है ना, वो सब बताता है, रास्ता खो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, और अचानक कोई गाइड मिल जाए जिसे सारे रास्ते पता है तो कितनी खुशी होती है। कोई रास्ता बता दे एक अनजान शहर में। तीसरा है ब्रह्मा बाप, क्या कहा मुरली में, ब्रह्मा बाप समान बनो, विजयी बनो, निर्बंधन बनो, फरिश्ता बनो। एक विदेशी बहन अनुभव सुना रही थी कि दादा लेखराज जब छोटे थे तो उनका बड़ा भाई एक बार उनको इतना डांटता है 45 मिनट्स ऑफ बीरेटिंग, 45 मिनट तक नॉन स्टॉप डांटते रहता है कि तुमको ये नहीं आता है, तुमको वो नहीं आता है, दुकान चलाना नहीं आता, और वो बस मौन में सुनते रहते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करते ना कोई स्पष्टीकरण देते। दिव्य गुण बचपन से ही थे। सृष्टि की सर्व महान आत्मा, उस एक आत्मा का अगर एक एक जन्म का रहस्य खोला जाए तो संसार की सारी सत्ताएं यहां आ जाए, एक एक जन्म का रहस्य, क्योंकि हर जन्म में महान आत्मा रही है, ऐसी आत्मा जिसने सृष्टि में परिवर्तन लाया है, कभी देशभक्त तो कभी भक्त, कभी क्रांतिकारी तो कभी समाज सेवक, परंतु एक एक जन्म जिसका महान रहा है। तो फॉलो फादर, सूक्ष्म वतन में जाओ, ब्रह्मा को देखो फरिश्ता स्वरूप में, और फिर सोचो कि शिव बाबा की पदरामणी उस तन में हो रही है और बाप दादा सम्मुख है, आंखों से ऊर्जा निकल रही है और हम भी स्वयं फरिश्ता स्वरूप में है, और उन आंखों से जो किरणें आ रही है यहां पड़ रही है आंख, ये सूक्ष्म वतन का ज्वालामुखी योग है और सारे विकर्म, सारे पाप, भय, चिंता क्या हो रहा है, नष्ट। स्टडी करना है, समझना है। जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा कनेक्शन किससे है, शिव बाबा से है, हमारा कनेक्शन ब्रह्मा से नहीं है, तो जिनका कनेक्शन ब्रह्मा से नहीं है वो ये कह रहे हैं कि हमारा सतयुग से भी कोई लेना देना नहीं है। चौथा, ब्राह्मण परिवार। किससे प्यार? इस परिवार से प्यार, और इस परिवार की बहुत सी बातें बाबा ने कही है। हर एक के प्रति क्या हो, कोई गलती करता है तो क्या क्या करो, ये नहीं कहते रहो कि ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। अपनी गलती दूसरों पर लगाना, यह है परचिंतन। शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना और कल्याण की दृष्टि, और सब एक दिखाई दे, संस्कार मिलन की रास, ये सबसे कठिन काम है, सबसे टफ, सबसे डिफिकल्ट। एक बूढ़ा माली था, उसका बगीचा था और वो दिन रात एक ही काम था उसको, बीजों को फूल बनाना। और जो बीज को फूल बनाने में अपना जीवन बिताता है उसे पता ही नहीं चलता है कि जीवन कैसे व्यतीत हो गया, बुढ़ापा आ गया पर उसे पता ही नहीं चला, वो अपने काम में ही लगा था बीज को फूल बनाने में। कई बार कहा जाता है कि मृत्यु भी सामने आई उसको ले जाने के लिए, पर देखा ऐसी तन्मयता और ऐसी तल्लीनता से अपने कार्य में लगा है फूल खिलाने में कि मृत्यु भी लौट गई। और इतने सालों का उसका अनुभव, कौन से फूल को कितना पानी देना है और कितना नहीं देना है, कौन सी खाद डालनी है, कौन से फूल को कहाँ रखना है और कैसे उगाना है, किस पौधे को, कौन से पौधे शेड लविंग है, कौन से पौधे को धूप में रखना है, कांटों का क्या महत्व है, उसे सब कुछ पता था। और अब बूढ़ा होते हो गया था। उसे लगा जो कुछ मैंने फूलों के बारे में जाना है अपने बेटों को सब कुछ सिखा दूं। और जब अनुभव अनुभव रहित को सिखाता है तो अनुभव रहित उस अनुभव को सीख नहीं पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। उन बेटों को उन्होंने सब सिखाया उस बूढ़े व्यक्ति ने कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, और बाद में वो बीमार पड़ गया। अब उसका काम केवल ये था कि खिड़की से देखना कि मेरे बगीचे का क्या हो रहा है। बेटों को बहुत समझाया कि इस पेड़ को इतना पानी देना, उस पौधे को उतना पानी देना, इसको यहाँ रखना, ये खाद डालना, पर बेटों ने उसकी बात न समझी न ध्यान दिया। और वो जब देखता था ये गलत समय पानी डाल रहे हैं, उसे पीड़ा होती थी। वो देखता था कि गलत पौधे को गलत स्थान पर रखा गया है, उसे पीड़ा होती थी। वो देखता था कि ये लोग केवल उन्हीं फूलों को देख रहे हैं जो चमक वाले हैं, जो तुरंत खिलते, पर तुरंत खिलने वाले फूल तुरंत मुरझा भी जाते हैं, उसे पीड़ा होती थी। वो बेटों को फिर समझाता था और आखिरकार बेटों ने कहा कि आप चुप रहो, हमें पता है क्या करना है, कब तक समझाओगे, बहुत हो गया, तुमने बहुत समझा दिया, अब हम अपने तरीके से करेंगे। और धीरे धीरे उस बगीचे में खरपतवार, वीड्स, और वो बगीचा उजड़ने लगा। और उजड़ते हुए उस बूढ़े माली ने अपने ही बगीचों को देखा और अपने ही बेटों को देखा। ये उदाहरण दिया जाता है उस सृष्टिकर्ता के लिए कि उस सृष्टिकर्ता ने इस मानवता का बगीचा बनाया, एक एक फूल को उसने सींचा, किसको कैसे क्या देना है, और फिर बेटों को समझाया, पर बेटे क्या कर रहे हैं और इस सृष्टि का क्या कर दिया। ये कहानी सृष्टि के लिए कही जाती है। यहां हम देखेंगे इस परिवार के लिए उसने सब कुछ कह रखा है, ये करो ये करो ये करो, ऐसा करो वैसा करो, संस्कार मिलन की रास करो। ये हो नहीं सकता कि सबके विचार एक जैसे हो, मतभेद हो सकता है पर मन भेद न हो। विचार अलग अलग हो सकते पर विचारों की धारा की जो धुरी है वो एक हो, उसे पीड़ा होती होगी जब एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, एक विंग दूसरी विंग, एक सेंटर दूसरा सेंटर, एक संघ दूसरा संघ, एक भाई दूसरा भाई, एक बहन दूसरी बहन। जब जब दो चेतनाएं टकराएगी संघर्ष होगा, और इस बगीचे का क्या होगा, फिर उजड़ेगा। हमसे न देखा जाए ये तबाही का मंजर, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान, नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ। गीत है तो ये कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, श्रेष्ठ परिवार, भगवान की बगिया, ईश्वरीय परिवार। वन वन की काठी है, हर एक एक नई जगह से आया, एक अलग स्थान से आया है, उसका बचपन अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसकी प्रांत अलग है, उसका संस्कृति उसके संस्कार अलग है, और वो सब लेकर वो यहां आता है। इसलिए जो हमें उसके संस्कार दिखाई दे रहे हैं वो संस्कार व्यक्ति नहीं है, वो एक पैटर्न है केवल उस व्यक्तित्व का। उस एक संस्कार के आधार पर हम उस पूरे व्यक्ति को जज नहीं कर सकते कि अच्छा नहीं है, ये अमृत वेला नहीं उठते, ये मुरली नहीं सुनते, ये खराब लोग हैं। हमें क्या पता उनमें कौन सी महानताएं छिपी हुई है, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनकी श्रेष्ठता। अभी हम केवल एक बाजू देख रहे हैं। इसलिए संस्कार मिलन की क्या करो? रास। अगर कोई गलती करता भी है तो उसको फैलाना नहीं है। सोचो यदि हमारा भाई है, लौकिक भाई या लौकिक बहन, और उनसे कोई गलती हो जाए तो हम सब जगह जाके फैलाते हैं क्या? फैलाते नहीं। सास और बहू चाहे कितनी भी खराब सास हो, फिर भी वो बहू घर की बात घर में ही रखती है। हाँ, कोई कोई करती होगी कुछ। इसलिए चौथा प्रभु परिवार, पांचवा पवित्रता, प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय गवाना भी क्या है? इम्प्यूरिटी। प्यूरिटी की परिभाषा में ब्रह्मचर्य एक छोटा सा भाग है। ब्रह्मचारी तो बहुत है संसार में, परंतु जरूरी नहीं है कि जो ब्रह्मचारी है सुबह उठते हैं, योग करते हैं या ध्यान करते हैं संसार में, परंतु अहंकार कितना ज्यादा है, तो क्या ये पवित्रता है? ब्रह्मचर्य पूर्ण है परंतु सत्ता का लालच कितना ज्यादा है, पैसों के पीछे पागल कितने हैं, तो क्या ये प्यूरिटी है? पवित्रता बहुत है, ब्रह्मचर्य बहुत है, परंतु ईर्ष्या है एक दूसरे से, टांग खींचने में लगे हैं। ब्रह्मचर्य में फुल पास 100%, कोई काम विकार नहीं, कोई वासना नहीं, परंतु क्रोध भयंकर। एक व्यक्ति था, उसको इतना क्रोधी था कि सबसे झगड़ते रहता था, और एक बार अपनी पत्नी से इतना झगड़ा किया कि उसको कुएं में ढकेल दिया और वो मर गई। और जब उसकी डेड बॉडी को निकाला गया, जब उसने देखा और उसे इतना दुख हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, पश्चाताप करने लगा, मेरे क्रोध की वजह से सब कुछ हुआ। और उसी समय उस गांव में एक योगी सन्यासी आए थे, वो गया और कहा कि मुझे मार्ग बताओ पश्चाताप का। सन्यासी ने कहा सन्यास ले लो तुम, बस यही एकमात्र मार्ग है, और तुरंत वो सन्यास धारण करता है। वो क्रोध ही था जिसने रूप बदला केवल तुरंत, और वो सन्यासी बन गया और वस्त्र निकाल दिए, वस्त्र बदल दिए और उनके साथ घूमने लगा और शरीर को पीड़ा देने लगा। वो लोग रास्ते पे चलते संग, वो पत्थर से नीचे से कांटों के पास से चलते, वो बिस्तर पर सोते वो जमीन पर सोता है, वो दो बार खाते ये एक ही बार खाता है, और धीरे धीरे इसकी ख्याति इतनी फैल गई इतनी फैल गई इतनी फैल गई, ऐसा महातपस्वी योगी, और उसका नाम पड़ जाता है शांतिनाथ। और कई वर्षों के बाद वो अपने ही गांव में लौटता है और उसका प्रवचन होता है और सारी सभा बैठी हुई है, और उसका एक पुराना मित्र आता है जिसे पता है, अरे ये जो सबसे झगड़ा करता था सबसे लड़ाई करता था ये बदल गया, और वो सामने आके बैठता है और प्रवचन के बीच में पूछता है, महाराज मैं आपका नाम भूल गया, आपका नाम क्या है? वो कहता है, मैं इतना प्रसिद्ध, अखबार नहीं पढ़ते, तुमको मेरा नाम नहीं पता? मेरा नाम है शांतिनाथ। मित्र सोचता है लग तो वही रहा है। प्रवचन आगे बढ़ता है, फिर से मित्र पूछता है, महाराज मैं भूल गया, कृपया आपका नाम बताइए। तब तो आंखों में आग बरसने लगती, अभी तो तुमको बताया, तुमने नाम कैसे भूल गया मेरा? मेरा नाम है शांतिनाथ। प्रवचन और आगे बढ़ता है, मित्र कहता है कि कृपया कीजिए महाराज, मैं आपका नाम फिर से भूल गया, तब तक तो महाराज दंडा ले लेते। वो मित्र कहता है, वही है आदमी, वही है, वो क्रोध जो उधर था अब इधर है, परिवर्तन नहीं हुआ है, क्रोध वही है, वो दमन हो गया है बस। पहले सबसे झगड़ा करता था, अब धर्म के क्षेत्र में झगड़ा है, विकार को केवल दबाया था बस। विकार ऊर्जा है, ये भूलना नहीं है, काम ऊर्जा है, काम को दबाया नहीं जा सकता है, उसका रूपांतरण होता है, इसलिए उन्हें शत्रु भी समझना ये भी, क्योंकि शत्रु समझा एक ऐसी एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा विकारों को शत्रु नहीं समझो, शत्रु समझ के उसको हराया तो वो बदला लेंगे, फिर जैसे किसी राजा को हराया जाता है और वो राजा बदला लेता है, उसी तरह ये उदाहरण है उस मुरली में, डेट हमें याद नहीं आ रही है, पर उस एक एक पांच विकारों का क्या क्या करे, रूपांतरण करना है। भय डर लगता है, डर एक ऊर्जा है, जैसे क्रोध ऊर्जा है, क्रोध क्या है, ऊर्जा है ना, एनर्जी है क्रोध। जो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है वो इस सोफा को भी उठा के फेंक सकता है, उसको वैसे उठाने को बोलो उठा नहीं सकेगा, क्रोध की अवस्था में ताकत आ जाती है। भय ऊर्जा है, भय में व्यक्ति जो कभी भागा नहीं है, अगर पागल पागल कुत्ता पीछे पड़ रहा है, ओलंपिक के विनर को भी पीछे छोड़ सकता है व्यक्ति, इतनी उसमें एनर्जी आ जाती है। इसलिए भय को ना दबाया जा सकता, भय को समझा जा सकता है। ये भय क्यों उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, उसको अगर दबाएंगे दमन करेंगे तो उसका नाश नहीं होता है। यू कैन नॉट किल फियर, यू कैन अंडरस्टैंड फियर। सभी विकारों का स्वभाव देखना है, काम विकार जागता है, उत्तेजना उठती है, फिर ठहरती है और फिर गिरती है, फिर दुख, फिर पश्चाताप, फिर भारीपन, उसके पैटर्न को स्टडी करना है, तो धीरे धीरे उससे हम ऊपर उठ जाएंगे, यही मार्ग है। किसी भी दुख से, दुख को दबाने से नहीं खत्म होता है, उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। तो क्या कहा बाबा ने, व्यर्थ समय नहीं गंवाना है और व्यर्थ संकल्प, मन तुम्हारी रचना है, तुम मन के मालिक हो, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मन जीत, ब्रह्मा बाबा, कर्मातीत, सारे शब्दों का प्रयोग है। श्रीमत की लगाम टाइट करो, वो घोड़ा है, भागने लगे तो सोचो कहाँ जा रहा है, उसको जबरदस्ती नहीं करना है, मन को देखना है कहाँ कहाँ जाता है, किस किस के पास जाता है, कौन सी घटनाओं के पास जाता है, कौन से भय है। उसको ये नहीं कहो ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, जो नहीं कहो कहा कि वहीं वो भागता है। फिर उसको कहो उसको याद नहीं करना। विदेश में एक्सपेरिमेंट हुआ था व्हाइट बेयर फिनोमिनन। साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और कहा कि सफेद भालू को याद नहीं करना है तुमको आधे आधे घंटे तक। स्टूडेंट ने कहा सफेद भालू, हमने तो काला भालू भी नहीं देखा आज तक, हमको भालू से कोई लेना देना ही नहीं है। पर काम क्या दिया, अगले आधे घंटे तक सफेद भालू नहीं देखना है, व्हाइट बेयर। और सबको जितना सोचने लगे नहीं देखना है वही दिखने लगा। खिड़की पर सफेद भालू, पीछे सफेद भालू, दीवारों पर सफेद भालू, आंख बंद करो तो मन में सफेद भालू, ब्लैकबोर्ड पर सफेद भालू। अगर मन को कहो ये ना करो तो वो और जोर से करता है। उसको समझना है जैसे बड़ा रास्ता है और उस रास्ते में एक पत्थर है बड़ा, पर रास्ता बहुत बड़ा है, पत्थर एक बाजू में, हम साइकिल से जा रहे और हमारा मन कहता है इस पत्थर से मुझे नहीं टकराना है। अरे टकराने का कोई सवाल ही नहीं, इतना बड़ा रास्ता है, पर हम कहते हैं पत्थर से मुझे नहीं टकराना है, पत्थर से मुझे नहीं टकराना है, पत्थर से मुझे नहीं टकराना है, और टकराते हैं। अपने आप वो संकल्प वहां ले जाता है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये याद नहीं करना, मुझे ये याद नहीं करना, मुझे ये याद नहीं करना। ये कुचक्र है, उसको समझकर उसके ऊपर निकल जाना है। वो चीज हमारे लिए व्यर्थ हो जाए, क्या हो जाए, व्यर्थ, आकर्षण ना रहे, व्यर्थ हो जाए, तभी उससे मुक्त हो सकते हैं। तो दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी है। और इस मुरली का दो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, अपने डायरी में लिखना है, यहां पर सूरज भाई जी ने जब क्लास कराई थी वो तब से हमें याद है, इस मुरली जो चली थी उसके बाद। तुम में ताकत है हर संकल्प को पूरा करने की। ब्राह्मण बच्चों के लिए क्या कहा है बाबा ने, हर संकल्प को पूरा करने की ताकत तुम में है। इसको अपने हिसाब से लिखना है, मुझ में ताकत है हर संकल्प को पूरा करने की। कितनी पावरफुल लाइन है, कोई भी संकल्प हो उसे पूरा करने की ताकत मुझ में है। और दूसरी लाइन है इस मुरली की जो कोई बीच में कह रहा था, व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो तो सदा श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कमाल दिखलाएगा। ये दो लाइन है बहुत पावरफुल। तो सिक्स्थ पॉइंट यही है, दो लाइन है, बॉटम लाइंस इस मुरली की, व्यर्थ को खत्म करो तो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना क्या करेगा, कमाल दिखाएगा। अगला है निस्वार्थ सेवा से प्यार। किससे प्यार, निस्वार्थ सेवा से प्यार। हम मांगने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, हम किसके लिए प्रसिद्ध है, देने के लिए। दिल्ली में अभी अभी एक पीयूष पॉल करके एक व्यक्ति था, फिल्म मेकर था, नया नया यंग, वो रात को जा रहा था, 9:30 का टाइम था, पंचशील एनक्लेव दिल्ली, और एक्सीडेंट हो गया, टकरा गया। आधा घंटा तक वहां लहूलुहान था और लोग वहां पर फोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। 11 बजे 10:30 बजे एक व्यक्ति ने उसे देखा और तुरंत आश्चर्य हो जाए लोग क्या कर रहे हैं ये, और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 11 बजे, एक्सीडेंट हुआ 9:30 बजे, और तब तक लोग वीडियोस बना रहे थे। पहले एक हॉस्पिटल में गए, वहां से वहां फैसिलिटी नहीं थी, फिर बड़े दौड़े हॉस्पिटल में 4 किलोमीटर, 11 बजे पहुंचा पेशेंट, 2 दिन में उनकी डेथ हो गई। ये कैसा परोपकार है। हम जो काम करते वो तो करें ही, परंतु उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हम करते हैं तो उससे पुण्य जमा होता है, वो कार्य करना है, परोपकार का कार्य। अगला है श्रीमत, लास्ट, श्रीमत को पकड़ के रखना है और श्रीमत से प्यार हो। बाबा ने कहा श्रीमत क्या है? लगाम, उसको खींच के रखो। कहाँ से मिलेगी? मुरली, अध्ययन से। केवल मुरली सुनना नहीं है, नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं, पॉइंट्स याद रखना है, उन पर चिंतन करना है, तो कुछ होगा। केवल गए, बैठे, सुने, बहुत अच्छा करके आ गए तो कुछ नहीं होगा। परिवर्तन सोचना है, शब्दों पर शोध सोचना है, एक एक लाइन पर सोचना है। और क्या इसका अर्थ हो सकता है? तो टोटल हमने इतनी बातें देखी। सबसे पहला प्रभु प्रेम, दूसरा अपना भाग्य का चिंतन, तीसरा कंप्लेंट नहीं करते रहना, शिकायत सोचना है, मुझे क्या क्या मिला उसके बारे में सोचना। सुबह उठते ही सबसे पहला काम ग्रैटिट्यूड, आज इस दिन के लिए धन्यवाद, इस प्रकृति को धन्यवाद, उस परमात्मा को, सबको धन्यवाद। तीसरा ब्रह्मा बाप, चौथा ये ब्राह्मण परिवार, प्रभु परिवार, ईश्वरीय परिवार। अगला पवित्रता, उसमें दो बातें, व्यर्थ को समाप्त करना है, मन का मालिक बनना है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। अगला मुझ में ताकत है हर संकल्प को पूरा करने की। और दूसरा वाक्य क्या था? व्यर्थ को समाप्त करो तो सदा समर्थ संक श्रेष्ठ संकल्पों के खजानों से कमाल करके दिखाएंगे। ये दो लाइनें, बॉटम लाइंस, पंच लाइंस। अगला परोपकार, निस्वार्थ निष्काम सेवा। अपना जो कार्य तो सब करते, अपना कार्य छोड़कर कुछ करना, किस लिए? पुण्य के लिए। और लास्ट क्या बताया? श्रीमत, परोपकार, श्रीमत। ऐसे कैसे? रहम दिल आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना शुभकामना वाली आत्मा को, ऐसे रहम दिल आत्माओं को फॉलो फादर करने वाली आत्माओं को, ऐसे स्नेही आत्माओं को परमात्मा प्रेम करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप समान आत्माओं को, ऐसे एवर रेडी आत्माओं को, ऐसे डबल पुरुषार्थी आत्माओं को, डबल निश्चय वाली आत्माओं को, ऐसे दाताओं को, ऐसे निष्काम सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे प्यूरिटी वाली आत्माओं को, बाप समान आत्माओं को, और ऐसे फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को, निर्बंधन आत्माओं को, ऐसे सहज श्रीमत की लगाम को टाइट रखने वाली आत्माओं को, रूलिंग पावर वाली आत्माओं को, कंट्रोलिंग पावर आत्माओं वाली आत्माओं को, मन का मालिक बनने वाली आत्माओं को, ऐसे मनजीत आत्माओं को, ऐसे कर्मातीत आत्माओं को, ऐसे दूसरों की गलती हुई तो ये ऐसा 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 करने वाले, ऐसा न कहने वाली आत्माओं को, ऐसे अपनी गलती को दूसरों पर न लगाने वाली आत्माओं को, परचिंतन से मुक्त आत्माओं को, ऐसे मैंने ये किया ऐसा न करने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे बिगड़े हुए संस्कार, बिगड़े हुए कर्म और बिगड़े हुए मूड को ठीक करने वाली आत्माओं को अपने सहयोग की शक्ति से, ऐसे संस्कार मिलन की रास करने वाली आत्माओं को, लोग देखे तो उन्हें 10 नहीं एक दिखाई दे, ऐसी आत्माओं को, नाउ और नेवर करने वाली आत्माओं को, दीदी दादी समान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे डेट फिक्स करने वाली आत्माओं को, संपन्नता की डेट फिक्स करोगे तो गेट खुलेगा मुक्ति का, ऐसे व्यर्थ चिंतन से मुक्त आत्माओं को, व्यर्थ समय न गवाने वाली आत्माओं को ऐसे, एवर रेडी आत्माओं को ऐसे, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को ऐसे, दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को ऐसे, बाप ऐसे, देह से न्यारे और बाप की प्यारी आत्माओं को ऐसे, एकांतवासी आत्माओं को ऐसे, सदा हर्षित आत्माओं को ऐसे, ऐसे ऐसे, हर सकर्म को चेक करने वाली आत्माओं को ऐसे, मीठे मीठे प्यारी प्यारी आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।